देखिए भाई आगे सबक व ईजा दखल अतिल हमजा तो अला लती नफील जिनसी लम यतगैर अमलु ऐ अमलु ला ऐ तासीर हा फी मदखूलिहा एराबं व बिना अन लि अन अल आमिल ला यतगैर अमलुहु लिदुखूल कलिमतिल इस्तिफहाम व मानाहा ऐ मानल हमजत दाखिलति अला लती लिनफील जिनसी इम्मल इस्तिफहामु हकीकतन फतकूलु अला रजुल फिद्दारी मुस्तफहिमन। भाई गुज़श्ता सबक में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला की बहस चल रही थी। साहिब काफिया ने बतलाया कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला में पांच वजहें पढ़ना जायज हैं। भाई एक सूरत यह कि दोनों इसम जो हैं वो मबनी अलल फता हों, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और दूसरी सूरत यह कि दूसरा इसम मनसूब हो यानी उस पर तनवीन आए, जैसे ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्ला। तीसरी सूरत यह कि दूसरा इसम मरफू हो, भाई ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्ला। चौथी सूरत यह कि दोनों पर रफा पड़ें, ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्ला। और पांचवीं सूरत यह है कि पहले इसम पर रफा और दूसरा मबनी अलल फता हो, ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। और इस पांचवीं किस्म की तफसील हमने पढ़ी थी, इसमें साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि यह ला जो है मुशाबे बिलैसा है और इसका इसम मरफू होता है और खबर मनसूब, तो ये ला मुशाबे भी लैसा है और ये अपने इसम को रफा देता है, इसलिए ला हौलुन ये मरफू है। अलबत्ता इसको साहिब काफिया ने ज़ईफ करार दिया था, इसलिए क्योंकि ला बमाने लैसा के बहुत कलील अमल करता है, ला बमाने लैसा के बहुत कलील यानी कलाम अरब में बहुत कम ऐसा आया है कि ला को अमल दिया गया हो बमाने लैसा के। तो और फिर इसमें साहिब जामी ने आपको बतलाया ये कि पहला ला तो ला मुशाबे भी लैसा है और दूसरा ला जो है वो लाए नफी जिन्स है, इसीलिए उसका इसम मबनी अलल फता है, ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। फिर आगे साहिब जामी ने जिक्र फरमाया कि ये जो ज़ौफ की वजह जिक्र की गई है, इस ज़ौफ की वजह को ज़ईफ करार दिया गया है। किस चीज को? इस रफा के। इस पर रफा क्यों आया? उस रफा की जो वजह जिक्र की गई है और उसको ज़ईफ करार दिया गया है, तो इस ज़ौफ की वजह को ज़ईफ करार दिया गया है कि ये रफा की ये वजह नहीं है, बल्कि रफा की यहां एक सूरत और भी है और वो ये कि इस ला को भी ला नफी जिन्स ही करार दे दें, अलबत्ता ये मुलगा अनिल अमल है और ला नफी जिन्स के मुलगा होने के अमल सिर्फ तकरार ला है जो यहां पर मौजूद है, और बाकी दोनों इस्मों का एराब के अंदर बाहम मुआफिक होना, एक दूसरे जैसा होना, कहते हैं इसका कोई दखल नहीं है ला के मुलगा करने में। भाई मैंने बताया था कि ये जो ला है ये आमिल ज़ईफ है, लिहाजा आप चाहें तो इसके अमल को लग़ भी कर सकते हैं कि ये अमल करे ही ना, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि ला का तकरार होना चाहिए और नीज दो जो इसम हैं उन पर दोनों इस्मों का एराब एक जैसा होना चाहिए, लेकिन अल्लामा रजी फरमाते हैं कि नहीं, दोनों इस्मों के एराब का एक जैसा होना इसका ला के मुलगा कर देने में कोई अमल नहीं है। ला के मुलगा करने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो है तकरार ला, और तकरार ला यहां मौजूद है। और साहिब जामी ने भी अल्लामा रजी की ताइद की है कि उनकी वजह को यहां पर जिक्र फरमाया कि साहिब काफिया ने अव्वल के अंदर रफा को जो ज़ईफ करार दिया था उसको अल्लामा रजी ने ज़ईफ करार दिया है, उसको साहिब जामी ने जिक्र फरमाया। भाई तो अव्वल पर रफा किस लिए आया कि ये ला भी कौन सा बनाओ, ये ला भी वही नफी जिन्स है, अलबत्ता मुलगा अनिल अमल है, और ला के मुलगा अनिल अमल के लिए क्या शर्त है? सिर्फ एक ही शर्त है कि तकरार ला होना चाहिए और वो यहां पर मौजूद है। और फिर मैंने तफसील बयान की थी कि भाई ला आमिल ज़ईफ है, आप चाहें तो इसके अमल को लव कर सकते हैं, ये आमिल ज़ईफ है, आप चाहे इसको आमिल बनाए ही ना, लेकिन इसके अमल को मुलगा करने की एक ही शर्त है और वो ये कि ला का तकरार होना चाहिए, फिर चाहे तो आप दोनों ला जो हैं तो आप चाहें तो दोनों के अमल को क्या कर दें, मुलगा कर दें, और आप चाहें तो सिर्फ पहले के अंदर अमल को मुलगा कर दें, और आप चाहें तो सिर्फ दूसरे के अंदर अमल को मुलगा कर दें। जैसे आखिरी तीनों वजहों में आप गौर कर लें, चौथी वजह के अंदर ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्ला, यहां पर भी दोनों ला कौन से हैं, ला नफी जिंस करार देकर आप दोनों को मुलगा अनिल अमल कर सकते हैं, और आप चाहें तो सिर्फ दूसरे को मुलगा अनिल अमल कर दें, जैसे तीसरी वजह में था ला हौला वला कुव्वतुन, वहां सिर्फ दूसरे को मुलगा कर दिया गया अमल से, और आप चाहें तो सिर्फ पहले को मुलगा अनिल अमल कर दें, और वो जैसे पांचवीं वजह में है ला हौलुन वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, तो ये पहले ला को ला नफी जिंस भी करार दिया जा सकता है जो मुलगा अनिल अमल हो। भाई तफसील समझ में आ गई। और फिर साहिब जामी ने बतलाया था कि अगर वो तौजीह की जाए जो साहिब काफिया ने जिक्र की है कि ये ला मुशाबे भी लैसा है, तो इस सूरत में फिर ये आत्फ जुमला अलल जुमला होगा, इसलिए क्योंकि ला मुशाबे भी लैसा अपनी अलग खबर चाहता है, वो उसको नसब देना चाहता है, और ला नफी जिंस जो है ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये अपनी खबर को रफा देना चाहता है, तो लिहाजा आप दोनों की एक ही खबर नहीं बना सकते कि आप इल्ला बिल्ला को दोनों के लिए खबर बना दें। भाई सूरत में तो इल्ला बिल्ला जो खबर है वो मरफूअ भी होगी और मनसूब भी होगी, ला मुशाबे भी लैसा वो नसब देगा और ला नफी जिंस वो रफा देगा, तो एक ही खबर मरफू भी हो जाए मनसूब भी हो जाए ये नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, तो लिहाजा दोनों के लिए अलग खबर निकालेंगे, और जब दोनों के लिए अलग खबर निकालेंगे तो यातफे जुमला अलल जुमला हो जाएगा। और अगर दूसरी तौजीह ली जाए जो अल्लामा रजी ने बयान की है कि पहले ला को भी ला नफी जिंस बनाए अलबत्ता मुलगा अनिल अमल कर दें, तो इस सूरत में दोनों ला नफी जिंस हैं, लिहाजा आप दोनों की एक ही खबर भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों की अलग अलग खबरें निकाल लें, तो यहां आत्फे मुफरत अलल मुफरत भी जायज है और आत्फे जुमला अलल जुमला भी जायज है। भाई अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं वईदा दखलतिल हमजतु अला लल्लती लिनफील जिंस लम यतगयरिल अमल। भाई पहले मतन मतन देख लीजिए, व इजा दखलतिल हमजतु लम यतगयरिल अमलु व माना हल इस्तिफहामु वल अर्जु वत्तमन्नी। व इजा दखलतिल हमजतु लम यतगयरिल अमलु, जी यहां से आपको साहिब काफिया बतलाएंगे कि लाए नफी जिंस पर हमजा इस्तिफहाम दाखिल हो जाए तो उसका अमल बदलता नहीं है, लाए नफी जिंस पर हमजा इस्तेफाम दाखिल हो जाए तो उसका अमल नहीं बदलेगा। मसलन ला रजुला फिदार, ला रजुला फिदार, इस घर में कोई शख्स नहीं है। और इस मिसाल में देखो ला का इसम मबनी अलल फता है, क्योंकि इसमें पहली दो शर्तें पूरी हैं, तीसरी शर्त पूरी नहीं। ला रजुला फिदार ला का इसम ला के साथ मिला हुआ है, दरमियान में फसल नहीं, और नीज नकेरा भी है, अलबत्ता मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं है, और इस सूरत में यह मबनी अल फता होता है। तो ला रजुला फिदार, इस पर आप हमजा इस्तेफाम ले आए, अला रजुला फिदार, क्या इस घर में कोई आदमी नहीं है। तो देखो हमजा के लाने के बाद भी ला के अमल में कोई फर्क नहीं पड़ा, ला का इसम पहले भी क्या था मबनी अल फता, हमजा के लाने के बाद भी क्या है मबनी अल फता, अला रजुला फिदार। और यहां अब सवाल पूछा जा रहा है अला रजुला फिदार, क्या उस घर में कोई आदमी नहीं है, और अगर ला का इसम मंसूब हो तो भी इसी तरह रहेगा, यानी हमजा के लाने से ला के अमल में तब्दीली नहीं आएगी। जैसे इसम को मुजाफ भी कर दें, नकेरा भी हो और मुजाफ भी हो और साथ भी मिला हुआ हो, तो इस सूरत में वो मंसूब होता है। जैसे ला गुलाम रजुलिन फिदार, ला गुलाम रजुलेन फिदार, अब देखो ये ला का इसम मनसूब है, अब इस पर हमजा ले आए अला गुलाम रजुलेन फिदार, अब भी ला का इसम मनसूब है, तो हमजा के दाखिल होने से ला के अमल में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए भाई मतन मतन कहते हैं वईजा दखलतिल हमजतु लम यतगयरिल अमलु, और जब हमजा दाखिल हो जाए यानी लाए नफी जिंस पर लम यतगयरिल अमलु, तो उसका अमल बदलता नहीं है, जैसे उसका अमल हमजा के दाखिल होने से पहले था, हमजा के दाखिल होने के बाद भी उसी तरह उसका अमल रहेगा, यानी अगर उसका इसम पहले मबनी था तो हमजा के दाखिल होने के बाद भी मबनी रहेगा, और अगर पहले मुअरब था तो हमजा के दाखिल होने के बाद भी मुअरब ही रहेगा। वह माना हा भाई इसका फिर माना क्या होगा जब हमजा इस पर दाखिल हो जाए तो आपको बतलाएंगे वह माना हल इस्तेफामो वल अर्जु व तमन्नी। हमजा के दाखिल होने के बाद फिर अब इसका माना जो है वो या तो इस्तेफाम होगा या अर्ज होगी। अर्ज कहते हैं दरखास्त को, गुजारिश को, तो फिर उसका माना इस्तेफाम होगा या अर्ज यानी दरखास्त होगी वह तमन्नी और या तमन्नी होगी, या तमन्नी होगी। इस्तेफाम की मिसाल जैसे मैंने अभी दोनों मिसालें जिक्र की भाई, आ ला रजुला फिद्दार, पहले क्या था ला रजुला फिद्दार, इस घर में कोई आदमी नहीं है, अब आप इस पर हमजा ले आए आ ला रजुला फिद्दार, अब आप सवाल पूछ रहे हैं किसी से आ ला रजुला फिद्दार, क्या इस घर में कोई आदमी नहीं है, तो ये इस्तेफाम है, एक बात आप दूसरे से पूछ रहे हैं। और कभी कभार ये हमजा जो है फिर अर्ज का फायदा देगा, किसका फायदा देगा, अर्ज का फायदा देगा। अर्ज का माना मैंने बयान किया दरखास्त करना, गुजारिश करना। आप किसी अपने साथी से कहते हैं अला नुजूल लका इंदाना, अला नुजूल लका इंदाना, देखो नुजूल ला नफी जिंस का इसम है और साथ भी मिला हुआ है, नकेरा है, और तीसरी शर्त पूरी नहीं, मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं, तो यह मबनी अलल फता है भाई, तो हमजा के आने से ला के अमल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अला नुजूल अला का आइंदा ना, नुजूल का माना है नाजिल होना, आना। अला नुजूल अला का आइंदा ना, क्या आपका नुजूल नहीं है हमारे पास, यानी क्या आप हमारे पास नहीं आते, यानी आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाते, फनुहसीना इलैका, तो हम आपके साथ एहसान करते यानी नेकी करते, आपका इकराम करते। अला नुजूल अला का आइंदा ना, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाते, फनुहसीना इलैका, तो हम आपके साथ एहसान करते, आपके साथ अच्छा सुलूक करते, यानी हम आपका इकराम करते। तो देखो ये आप अपने किसी साथी से गुजारिश और दरखास्त कर रहे हैं, ये सवाल नहीं पूछ रहे आप उससे कि क्या आप हमारे पास नहीं आते, बात समझ में आ गई। ये आप उससे क्या कर रहे हैं, आप उससे दरखास्त और गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे पास तशरीफ लाइए, हम आपका इकराम करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। अला नुजूल लका इंदाना, क्या आप हमारे पास नाजिल नहीं होते, हमारे पास तशरीफ नहीं लाते, फनुहसीना इलैका, तो अगर आप आएंगे तो हम आपके साथ एहसान करेंगे। तो देखो यहां पर हमजा आया ला पर दाखिल हुआ और ये किस चीज का फायदा दे रहा है, अर्ज का फायदा दे रहा है। अब यहां इस्तेफहाम नहीं, इस्तेफहाम नहीं, या कभी तमन्नी का फायदा देगा यह हमजा, जैसे कोई जगह है जहां पर पानी नहीं है और पानी मिलने की उम्मीद भी नहीं है वहां पर, उस मकाम पर कोई शख्स कहता है अला मा आ फअशरबहू, अला मा आ, क्या पानी नहीं है, फअशरबहू, तो मैं उसको पी लेता, यानी ये तमन्ना कर रहा है काश के यहां पानी होता तो मैं उसको पी लेता, अला मा आ फअशरबहू। तवज्जो है, तो यहां ये हमजा किस चीज का फायदा दे रहा है, तमन्ना का फायदा दे रहा है। यहां वो कोई सवाल नहीं कर रहा कि क्या पानी नहीं मौजूद, क्योंकि उसको पता है यहां पानी नहीं है और यहां पानी मिलने की उम्मीद भी नहीं है। तो एक चीज जिसके मिलने की उम्मीद भी ना हो उसको तलब करना ये तमन्ना है। ये क्या है, याद रखो तमन्ना बाज़ औक़ात की जाती है किसी ऐसी चीज की जो जो मुमकिन ही नहीं होती, मुमकिन ही नहीं होती। जैसे जैसे कोई बूढ़ा शख्स कहता है काश के मैं जवान हो जाता, अब देखो जवानी वापस नहीं आ सकती, मुमकिन ही नहीं है। तो देखो इसमें जवानी जो है उसका वापस आना मुमकिन ही नहीं है। और एक सूरत यह है कि एक चीज उसका होना मुमकिन तो है लेकिन उम्मीद नहीं है उसके मिलने की, तो इसको भी तमन्ना ही कहते हैं। तो अल्लाह मा आ यानी पानी की उम्मीद ही नहीं है, उस मकाम पर एक आदमी क्या कहता है अल्लाह मा आ फअशरबहू, काश के पानी होता तो मैं उसको पी लेता। बात समझ में आ गई। तो देखो हमजा जब आएगा तो उससे ला के अमल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो हमजा कभी इस्तेफाम के लिए होगा, कभी अर्ज के लिए होगा और कभी तमन्नी के लिए होगा। और इस्तेफहाम के लिए हो तो यह तो हमजा का हकीकी माना है। यह हमजा है भी किस लिए? इस्तेफहाम के लिए। और लाया भी किस लिए गया है? अला रजुला फिदार, यहां इस्तेफहाम ही मकसूद है, तो यहां हमजा अपने हकीकी माना में है। और कभी कभार इस्तेफहाम वहां नहीं होगा बल्कि अर्ज या तमन्ना होगी, और अर्ज और यह तमन्ना, यह हमजा तो अर्ज या तमन्ना के लिए वजह नहीं है, तो मालूम हुआ यह हमजा यहां मजाजी माना में इस्तेमाल हो रहा है। हकीकी माना किसे कहते हैं? जिसके लिए लफ्ज को वजह किया गया हो। तो अगर हमजा इस्तेफहाम के लिए होगा तो यह हकीकी माना है, और अगर हमजा अर्ज या तमन्नी के लिए है तो यह इसका हकीकी माना नहीं। तो इस सूरत में फिर यह हमजा जो है मजाजी माना में इस्तेमाल हो रहा है। फिर सुनो, फिर सुनो, पहली सूरत क्या थी? अला रजुला फिद्दारी, क्या इस घर में कोई आदमी नहीं है? आप सवाल कर रहे हैं, आपको चूंकि इलम नहीं था इसलिए आपने कहा अला रजुला फिद्दारी, क्या कोई आदमी इस घर में नहीं है? तो ये इस्तेफहाम के लिए है। जब आपको एक चीज का इलम ना हो तो आप उसके बारे में पूछते हैं। और बाकी दोनों के अंदर हमजा को इस्तेफहाम के लिए नहीं बना सकते क्योंकि वहां आपको इलम है भाई। हमने वहां अर्ज के लिए बनाया या तमन्ना के लिए बनाया। क्यों अर्ज या तमन्ना के लिए बनाया? क्योंकि वहां हकीकी माना के लिए वो नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? वजह यह कि वहां आपने क्या कहा? अला नुजूल लका इंदाना, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाते? फनुहसिन इलैका, तो हम आपके साथ एहसान करते। अब यहां सवाल पूछना मकसद नहीं है। देखो, वो आपके पास आया है या नहीं आया आपको पता है या नहीं? आप ही के पास तो आने की बात हो रही है, किसी और के पास आने की बात तो नहीं। मुतकल्लिम के पास ही आने की बात हो रही है, किसी और के पास आने की तो बात नहीं हो रही। तो मुतकल्लिम को तो पता है कि वो शख्स उसके पास नहीं आया। मुतकल्लिम को इलम है कि जिससे बात कर रहा है ये इस मुतकल्लिम के पास नहीं आया, फिर भी वो कह रहा है अला नुजूल लका इंदना। तो अगर आप इस्तेफहाम बनाए तो माना ये हो जाएगा, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाए? और मुतकल्लिम ही तो सबसे ज्यादा जानता है कि ये शख्स इसके पास नहीं आया, अपने पास आने की बात कर रहा है ना। तो जो अपने पास आने की बात कर रहा उसको इलम होगा या नहीं कि ये उसके पास आया है या नहीं आया? उसको इलम है, उसको इलम है कि उसके पास वो शख्स नहीं आया। तो लिहाजा यहां इस्तेफहाम वाला माना दुरुस्ती नहीं बनता। अला नुजूल लका इंदना, क्या आप हमारे पास नहीं आए? तो ये तो अगर आप इस्तेफहाम के लिए बनाएंगे तो फिर माना सही नहीं रहता, ये इस्तेफहाम के लिए नहीं हो सकता। और नीज दूसरी जगह अला माआ, क्या पानी नहीं है? यहां भी इस्तेफहाम के लिए नहीं बना सकते, इसलिए क्योंकि मुतकल्लिम को भी पता है यहां पानी नहीं है, और उसको यह भी पता है कि यहां पानी की उम्मीद भी नहीं है। तो जब उसको पता है यहां पानी की उम्मीद नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि क्या पानी नहीं है, तो ये इस्तेफहाम नहीं हो सकता। इस्तेफहाम तो कब होता है? जब एक चीज का आपको इलम ना हो। मेरा ख्याल बात नहीं समझ में आई। इस्तेफहाम कब होता है? जब एक चीज का मुतकल्लिम को इलम ना हो, फिर वो सवाल पूछता है। लेकिन मुखातब इसके पास आया है या नहीं आया ये तो उसको पता है, फिर अला नुजूल लका इंदाना ये इस्तेफहाम पर मबनी नहीं हो सकता, ये इस्तेफहाम नहीं हो सकता। और इसी तरह एक जगह है वहां उसको पता है यहां पानी की उम्मीद ही नहीं है, फिर वो कह रहा है अलामा, क्या पानी नहीं है, ये इस्तेफहाम नहीं हो सकता क्योंकि उसको भी पता है कि यहां पानी नहीं है भाई। तो इसलिए फिर यह अर्ज या तमन्नी के लिए होगा। तो कहते हैं व माना हल इस्तेफहाम वल अर्ज व तमन्नी, और इस फिर हमजा का माना जो है वो इस्तेफहाम होगा या अर्ज होगी यानी दरखास्त होगी, व तमन्नी और तमन्नी होगी भाई। अब इस सारे को शरा के साथ देखिए। कहते हैं व इजा दखलतिल हमजतु अला लल्लती लिनफील जिंसी, और जब दाखिल हो जाए हमजा इस्तेफहाम जो है लाए नफी जिंस पर, लम यतगैर अल अमलु ऐ अमलु ला, अल अमल से क्या मुराद है? अमलु ला, कि यानी अल अमल से खास अमल मुराद है, और वो किसका अमल है? ला का अमल। तो लम यतगैर अल अमलु ऐ अमलु ला, तो फिर ला का अमल बदलता नहीं है। ऐ तासीरुहा फी मदखूलिहा, ला के अमल से मुराद ला की तासीर है। ला के अमल से क्या मुराद है? ला की तासीर है। वजह यह कि यह ला का इसम कभी मबनी होता है, तो हम कहेंगे ये ला का असर है, ला का अमल नहीं। क्या कहेंगे? ला रजुला फिद्दारी, ये रजुल क्या है इस वक्त? मबनी अल अलफता है। और हम अब ये नहीं कहेंगे ये ला ने अमल करके इसको मबनी बनाया, बल्कि हम कहेंगे ये ला का असर है। याद रखो, अमल जो है, अमल का लफ्ज इस्तिलाह नहव में, इल्म नहव के अंदर जब ये कहा जाए इस चीज का ये अमल है, तो मतलब होता है ये इस किस्म का एराब देता है अपने मदखूल को, ये इस किस्म का एराब देता है। और ला रजुला, ये रजुल तो मबनी है, ये तो एराब है ही नहीं, तो इसको ला का असर तो कह सकते हैं, ला का अमल नहीं कह सकते। ये मबनी क्यों हुआ? ला के दाखिल होने की वजह से। तो क्या कहेंगे, ये ला ने अमल किया या ये ला का असर है? ला का असर कहेंगे, क्योंकि अमल का माना क्या होता है? अमल का माना होता है कि वो उसको एराब दे रहा है। क्या दे रहा है? एराब। हां, इधर देखिए, इसको इसी की इजाफत भी कर दें, ला गुलामा रजुलिन फिद्दार। अब ला के इसम में तीनों शर्तें पूरी हैं, ये ला के साथ जुड़ा भी हुआ है फसल ने दरमियान में, और नकेरा भी है, नकेरा की इजाफत नकेरा की तरफ हो तो भी वो नकेरा ही रहता है। और तीसरी शर्त ये थी कि मुजाफ या मुशाबे मुजाफ हो, और ये गुलाम भी क्या है? रजुल की तरफ मुजाफ है। तो जब तीनों शर्तें पूरी हो तो ला का इसाम मंसूब होता है, तो ला गुलामा रजुलिन, यहां हम कहेंगे ये ला ने अमल किया है और गुलामा रजुलिन को नसब दिया। तो अमल का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है इल्म नहव के अंदर? एराब के लिए इस्तेमाल होता है कि ये वाला एराब इसने दिया है। और ला रजुला फिद्दार, ये तो रजुल तो मबनी अल अलफता है, ये तो मुअरब है ही नहीं, तो यूं कहेंगे ये ला का असर है। भाई बात समझ में आ गई? तो यहां क्या आया? ऐ लम यतगैर अल अमल ऐ अमल ला, ला का अमल बदलता नहीं है। बतला दिया कि अमल से मुराद ऐ तासीरुहा, ला की तासीर मुराद है। ऐ तासीरुहा फी मदखूलिहा, यानी ला की जो तासीर है फी मदखूलिहा, अपने मदखूल में, यानी जिस पर वो दाखिल हुआ है, एराब व बिना अन, मुअरब और मबनी होने के एतबार से, एराब और बिना के एतबार से, मुअरब और मबनी होने के एतबार से, तो इसकी जो तासीर है अपने मदखूल में, यानी इसका मदखूल कभी मुअरब होता है और कभी इसका मदखूल मबनी होता है, तो वो तासीर मुराद है अमले ला से। फिर देखिए तर्जमा कहते हैं, व इजा दखलतिल हमजतु अला लल्लती लिनफील जिन्स लम यतगैरिल अमल, और जब हमजा दाखिल हो जाए लाए नफी जिन्स पर, तो लम यतगैरिल अमल, तो वो अमल बदलता नहीं है। ऐ अमलु ला, यानी ला का अमल जो है वो बदलता नहीं। और अमल ला से क्या मुराद है? ऐ तासीरुहा फी मदखूलिहा एराबा व बिनाअन, इससे मुराद उस ला की तासीर है उसके मदखूल के अंदर एराब और बिना के एतबार से। लिअन्न العامل لا يتغير عمله لدخول كلمة الاستفهام, इसलिए क्योंकि जो आमिल होता है, वो जो आमिल होता है, ला यतगैरु अमलुहु, उसका अमल बदलता नहीं है, लिदुखूली कलिमतिल इस्तिफामी, कलिमा इस्तिफाम के दाखिल होने से, कोई भी आमिल हो उसका अमल कलिमा इस्तिफाम के दाखिल होने से बदलता नहीं। व मानाहा ऐ मानल हमजति दाखिलति अला लल्लति लिनफील जिन्सी, व मानाहा, माना मुजाफ है और हा जमीर मुजाफोन इले, इस जमीर का मर्जे क्या है, इससे क्या मुराद है? साहिब जामी बतला रहे हैं कि यह हा जमीर हमजा को राजे है। वह मानाहा ऐ मानल हमजती, और इस हमजा का माना कौन सा हमजा? अदाखिलती आला लल्लती ली नफील जिन्सी, वो हमजा जो दाखिल हुआ है लाए नफी जिन्स पर, उसका जो माना है इम्मल इस्तेफहामू, या तो इस्तेफहाम होगा हकीकतन, या तो क्या होगा? इस्तेफहाम होगा हकीकतन, यानी वो हमजा लाया ही इस्तेफहाम के लिए गया होगा, और कभी अर्ज और तमन्नी के लिए। भाई तो कहते हैं, व मानाहा ऐ मानल हमजति दाखिलति अला लल्लति लिनफील जिन्स इम्मल इस्तेफहामू, तो उस हमजा का माना जो है वो या तो इस्तेफहाम होगा हकीकतन। फतकूलु, पस आप मसलन कहते हैं, अला रजुल फिद्दारी मुस्तफहिमन, इस हाल में कि आप सवाल कर रहे हैं, अला रजुल फिद्दारी मुस्तफहिमन, इस हाल में कि आप क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। भाई भाई देखिए, एक और कीमती बात, भाई ये मसले को साहिबे काफिया ने यहां जिक्र क्यों फरमाया? कि हमजा इस्तेफहाम जब ला पर दाखिल होगा उसका अमल नहीं बदलेगा, और उसके बाद फिर कलाम का माना या तो इस्तेफहाम होगा या तमन्नी होगी या अर्ज होगा। सवाल यह कि साहिब काफिया को यह मसला यहां जिक्र करने की क्या जरूरत थी? यह बात तो जाहिर सी है, साहिब जामी ने भी बता दिया कि कलिमा इस्तेफहाम जो है जब किसी आमिल पर दाखिल हो जाए तो इससे उसका अमल बदलता नहीं। अभी बताया कि لأن العامل لا يتغير عمله لدخول كلمة الاستفهام, इसलिए क्योंकि वो जो आमिल होता है उसका अमल बदलता नहीं कलिमा इस्तेफहाम के दाखिल होने से। तो फिर यहां क्या जरूरत थी, किस वजह से साहिब काफिया ने इसको यहां जिक्र फरमाया? तो वजह याद रखना, वजह यह कि माल और हासिल के एतबार से देखें तो अब ला नफी का फायदा नहीं दे रहा। माल कहते हैं नतीजे को, नतीजे नतीजे और माल के एतबार से कलाम नफी पर दलालत नहीं कर रहा, तो यह ला नफी का फायदा नहीं दे रहा। भाई किस तरह नफी का फायदा नहीं दे रहा? नफी तो अभी भी मौजूद है, अला रजुला फिदारी, क्या तर्जमा होगा? अला रजुला फिदारी, नफी के साथ तर्जमा करो अला रजुला फिदारी, क्या इस घर में कोई आदमी नहीं है? देखो नहीं तो अभी भी आ रहा है। अल्लाह नुजूल अला का आइंदा ना, क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाते? नफी तो अभी भी इसके अंदर मौजूद है। तो जवाब याद रखना कि भाई माल के एतबार से, किसके एतबार से? हासिल कलाम के एतबार से देखें तो देखो वैसे ला नफी का फायदा देता है, वो जुमला खबरिया में उसमें नफी आ जाती है। मसलन मैंने क्या कहा, ला रजुला फिदार, इस घर में कोई आदमी नहीं, मैं सुनने वाले अपने मुखातब को बतलाना चाहता हूं ला रजुला फिदार, इस घर में कोई आदमी नहीं है। लेकिन जब हमजा इस्तेफहाम आ गया, अब देखो नफी के साथ खबर नहीं, अब या तो वह इस्तेफहाम हो रहा है, क्या हो रहा है? तो देखो माल कलाम हासिल कलाम के एतबार से कलाम अब नफी के लिए नहीं लाया गया, दूसरे को किसी चीज की नफी की खबर नहीं दी जा रही, बल्कि सवाल पूछा जा रहा है नफी की ला किस लिए वजह है? नफी की खबर देने के लिए, लेकिन यह नफी की खबर नहीं दे रहा, बल्कि अब यहां इस्तेफहाम है, सवाल पूछा जा रहा है। इसके जरिए क्या किया जाता है, किसी दूसरे से सवाल पूछा जाता है, या अला नुजूल अला काइंदाना, अब देखो हासिल कलाम के एतबार से यह कलाम नफी की खबर नहीं दे रहा, बल्कि ये इसके अंदर दरखास्त और गुजारिश की जा रही है। और अलामा अशरबहू, इसके अंदर देखो ये माल और हासिल के एतबार से यह कलाम तमन्ना का फायदा दे रहा है। इससे क्या मालूम हो रही है, तमन्ना मालूम हो रही है। तो ला तो किस लिए वजह था, उसके जरिए नफी की खबर दी जाती है, लेकिन अब कलाम के अंदर उसमें नफी की खबर नहीं है, बल्कि वो या तो इस्तेफहाम के लिए हो जाएगा या तमन्नी के लिए या अर्ज के लिए। मालूम हुआ ला वो तो नफी की खबर देने के लिए वजह था, नफी जिंस के लिए वजह था, अब माल और नतीजे के एतबार से वो फायदा हासिल नहीं हो रहा। और ये ला अमल ही किस वजह से करता है, नफी की वजह से। ये ला अपने इसम और खबर में अमल करता है, किस लिए? क्योंकि ये ला नफी का फायदा दे रहा है। और आप पढ़ चुके हैं मुस्तस्ना की बहस में कि जब ला की नफी टूट जाए, मसलन इल्ला आ जाए, तो फिर ला अमल नहीं करता भाई। तो यहां पर भी माल कलाम के एतबार से देखें तो ये कलाम नफी के लिए नहीं है, बल्कि इस्तेफहाम के लिए है या अर्ज के लिए है या तमन्नी के लिए है। तो गोया यूं समझो ला की नफी खत्म हो चुकी है, ला की नफी खत्म हो चुकी है। और जब ला की नफी खत्म हो गई तो जहन में सवाल पैदा होता है कि ला की नफी तो खत्म हो चुकी है तो क्या अब भी यह अमल करेगा या नहीं करेगा? मां कबल में बताया था कि इल्ला के जरिए नफी टूट जाए तो फिर वह अमल नहीं करता। तो साहिब काफी आपको बतलाना चाहते हैं कि हमजा के आने के बाद अगरचे नतीजे और माल के एतबार से कलाम अब नफी का फायदा नहीं दे रहा, बल्कि इस्तेफहाम तमन्नी और अर्ज का फायदा दे रहा है, लेकिन फिर भी ला अमल करेगा, फिर भी ला अमल करेगा। वजह समझ में आ गई, मैं माल और हासिल कलाम कह रहा हूं बार बार, तवज्जो है, क्योंकि वैसे तो ला नफी का फायदा अभी भी दे रहा है। अल्लाह रजुला फिदार, देखो तर्जमा करो, क्या इस घर में कोई आदमी नहीं है? देखो नहीं तो आप अभी भी ला रहे हैं, लेकिन क्या इस नफी के जरिए आप दूसरे को एक चीज की नफी बतला रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं। और हालांकि ला तो किस लिए वजह है, इसके जरिए तो नफी की खबर दी जाती है। तो माल के एतबार से अब कलाम नफी का फायदा नहीं दे रहा बल्कि इस्तेफाम तमन्नी या अर्ज का फायदा दे रहा है, लेकिन फिर भी ला अमल करेगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं इमल इस्तेफाम, या तो उस हमजा का माना इस्तेफाम होगा हकीकतन, फतकूल अला रजुलफी दारी मुस्तफहीमन, बस आप कहते हैं कि इस घर में कोई आदमी नहीं है सवाल पूछते हुए। वह इमल अर्जू, या उस हमजा का माना अर्ज यानी दरखास्त और गुजारिश होगी, मिसल मिसाल के तौर पर अला नुजूल आइंदी, यानी क्या आपका नुजूल नहीं है हमारे पास, अल्लाह नुजूला लका इंदी, मुखातब के नुजूल की बात हो रही है ना, तो जार मजरूर महजूफ निकाल लेंगे, अल्लाह नुजूला इंदी, क्या हमारे पास ना, हमारे पास तशरीफ आप नहीं लाते। वलम यजकुर सीब वही अन्न हाल अला फिल अर्ज का हाल ही कबल अल हमजती। भाई इमाम सीबवैन रहमहुल्ला ने यह जिक्र नहीं फरमाया कि जब हमजा आ जाए और वो अर्ज का फायदा दे, किसका अर्ज का फायदा दे, तो फिर भी ला का अमल उसी तरह होगा जैसे हमजा से पहले था, जैसे कि इमाम सीवे ने जिक्र नहीं फरमाया। इस्तेफहाम को तो उन्होंने जिक्र फरमाया है कि हमजा जब आ जाए ला नफी जिंस पर तो ला उसी तरह अमल करेगा, लेकिन ये हमजा अगर अर्ज का फायदा दे रहा हो तो फिर इस सूरत में भी ला का अमल उसी तरह रहेगा। इमाम सीबवे ने यह बात जिक्र नहीं की भाई, तो कहते हैं वलम यजकुर सीबवे ही, और इमाम सीबवे रहिमहुल्ला ने यह बात जिक्र नहीं की कि अन्न हाल अला फिल अर्जी का हाल ही कबल अल हमजती, कि ला का हाल जो है अर्ज की सूरत में भी का हाल ही कबल अल हमजती उसी तरह होगा जैसे कि ला का हाल था हमजा से पहले। इमाम सीबवे ने यह बात जिक्र नहीं की। बल ज़करहु सीराफियो, बल्कि ये इमाम सीराफी रहिमहुल्ला ने जिक्र फरमाया है। इमाम सीराफी का जिक्र पहले गुजर चुका है, मैंने आपको बतलाया था कि ये अबू सईद सीराफी रहिमहुल्ला बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं भाई, और ये 50 साल तक बगदाद के अंदर काजी रहे भाई, और तमाम उलूम के ये माहिर थे भाई, बहुत बड़े आलिम दीन थे भाई। तो कहते हैं इमाम सीबवे ने तो जिक्र नहीं फरमाया, अलबत्ता इमाम सीराफी ने इसको जिक्र फरमाया है। इमाम सीराफी की वफात हुई है 368 हिजरी में, 368 हिजरी में, 368 भाई, 368 हिजरी में। तो कहते हैं बल ज़करहु सीराफी, बल्कि इसको इमाम सीराफी ने जिक्र फरमाया है कि अर्ज की सूरत में भी ला उसी तरह अमल करेगा। व तबिआहुल जजूली युवल मुसन्निफू, व तबिआहू, और इमाम सीराफी का इत्तेबा किया है अल जजूली युवल मुसन्निफू, अल्लामा जजूली ने भी और मुसन्निफ काफिया अल्लामा इब्ने हाजिब ने भी। यह बात इमाम सीबवे ने जिक्र नहीं की। साहिब काफिया जो है इस काफिया के अंदर अक्सर वो मसाइल जिक्र फरमाते हैं जो इमाम सीबवे ने जिक्र फरमाए हैं, और यहां उन्होंने अर्ज को भी जिक्र किया, लेकिन याद रखना इमाम सीबवे ने यह बात जिक्र नहीं की। किसने जिक्र की है? इमाम सीराफी ने, और फिर अल्लामा जजूली ने भी उनका इत्तेबा किया, उन्होंने भी इसको इसी तरह जिक्र किया, और साहिब काफिया ने भी इसको जिक्र किया है। तो कहते हैं व तबिआहुल जजूली युवल मुसन्निफू, और इमाम सीराफी का इत्तेबा किया है अल्लामा जजूली ने और मुसन्निफ काफिया ने। अल्लामा जजूली भाई याद रखो, अल्लामा जजूली, इनका नाम अबू मूसा ईसा जजूली है, अबू मूसा ईसा जजूली है, और ये बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं। इनकी वफात हुई है 607 हिजरी, 607 हिजरी, 607 भाई, 607 हिजरी में इनकी वफात हुई है भाई, और इनका जमाना तकरीबन वही साहिबे काफिया वाला जमाना है। साहिबे काफिया की वफात हुई है 646 हिजरी में, 646 हिजरी में, यानी तकरीबन इनके 40 साल बाद इनका साहिबे काफिया का इंतकाल हुआ है, यानी यूं कहो ये अल्लामा जुजूली का इंतकाल हुआ है साहिबे काफिया की जवानी के अय्याम में, तो तकरीबन एक जमाना है, करीब करीब है। तो कहते हैं इसको इमाम सीराफी ने जिक्र किया है, और अल्लामा जजूली, जजूली में याद रखना जीम पर फतहा पढ़ना है और जा पर जम्मा, बाज लोग इसको जुजूली पढ़ते हैं, जीम पर भी जम्मा और जा पर भी जम्मा, लेकिन अल्लामा इब्ने खल्लेकान जो है वो फरमाते हैं कि जीम के फतहा के साथ सही है भाई। अल्लामा इब्ने खल्लेकान ये बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और इनका नाम खल्लेकान इसलिए पड़ गया क्योंकि ये खल्ले और काना का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, खल्ले और काना, तो इनका नाम ही क्या पड़ गया, खल्लेकान पड़ गया। ये इसी तरह है जैसे बूढ़े को जो है अरबी जुबान में कुंतीयुन कहते हैं, बूढ़े का नाम कुंतीयुन मशहूर है भाई, क्योंकि बूढ़ा शख्स अमूमन क्या कहता है, मैं ऐसा था और मैं ऐसा था और मैंने ऐसा किया, कुंतु कजा व कुंतु कजा व कुंतु कजा, तो नाम ही क्या पड़ गया उसका, कुंतीयुन। ये इसी तरह है जैसे तालिब इलम का नाम कदीम जमाने में मातकूल मशहूर हो गया, तालिब इलम को मातकूल कहते थे। वजह यह कि जो भी तालिब इलम किसी के साथ बैठता तो फौरन ही सवाल करता, एक दूसरे से आपस में तकरार करते, मातकूल फी हाज़िहिल मसला, आप इस मसले में क्या कहते हैं, दूसरा कहता मातकूल फी हाज़िहिल मसला, आप इस मसले में क्या कहते हैं। तो देखो वो एक लफ्ज जो कसीरु दौरान था उनकी जुबानों पर वही उनका नाम बन गया, तो तालिब इलम का नाम ही क्या पड़ गया, मातकूल भाई। तो अल्लामा इब्ने खल्लेकान जो है वो जिक्र फरमाते हैं कि ये सही लफ्ज जजूली जीम के फतहा के साथ है। तो कहते हैं अल्लामा सिराफी ने इसको जिक्र किया है और अल्लामा जजूली और अल्लामा इब्ने हाजिब ने इसका इत्तेबा किया है। वरद ज़ालिकल अंदलुसियो, ये अंदलुस, अंदलुस इसके अंदर याद रखना ये मुल्क का नाम है, ये किसका नाम है, अंदलुस पढ़ा जाता है लेकिन याद रखना अंदलुस, हमजा पर भी फतहा है, नून साकिन है, दाल पर भी फतहा है और लाम पर जम्मा है, अंदलुस। तो ये कहां के रहने वाले थे, अंदलुस के। तो अलामा अंदलुसी कहते हैं वरद ज़ालिकल अंदलुसियो और इसको अलामा अंदलुसी ने रद्द किया है। तो ये अंदलुस ये एक मुल्क का नाम था तो उसी की तरफ निस्बत है। और यह अलामा अंदलुसी याद रखो ये बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं और इनका नाम है अबू मोहम्मद कासिम अंदलुसी भाई, अबू मोहम्मद कासिम अंदलुसी, और इनकी वफात हुई है 661 हिजरी में, इनकी वफात हुई है 661 हिजरी में, यानी इनका और साहिब काफिया का जमाना तकरीबन एक ही है। साहिब काफिया की वफात हुई है 646 हिजरी में और इनकी वफात हुई है 661 हिजरी में, और उन्होंने इसको रद्द किया है कि यह गलत है। तो कहते हैं वरद ज़ालिकल अंदलुसी यू और इसको अल्लामा अंदलुसी ने रद्द फरमाया है। वकाला और वो फरमाते हैं हादा खता उन ये गलती है, ले अन्नहा इदा कानत अर्जन, इसलिए क्योंकि ला जब अर्ज के लिए हो, किस लिए हो, जब इस पर हमजा आ गया और अब ये किस लिए बन गया, अर्ज के लिए हो गया, तो कानत मिन हरूफिल अफाली, तो उस वक्त फिर ये हरूफ अफाल में से होगा। भाई आपने पढ़ा है बास हरूफ ऐसे हैं वो हमेशा फेल पर ही दाखिल होते हैं, इसम पर दाखिल नहीं होते, जैसे इन, इन हरफे शर्त है, ये हमेशा किस पर दाखिल होता है, फेल पर। अगर इसम पर बजाहिर दाखिल हो भी रहा हो वहां आपको फेल मुकद्दर निकालना पड़ेगा भाई, बात समझ में आ गई। इसी तरह लौ है, इसी तरह हरूफ तहजीज हैं, हरूफ तहजीज जैसे अल्लाह और हल्ला वगैरह जो किसी काम पर उभारने के लिए आते हैं, हज़ज़ा युहज़ज़ु तहज़ीज़ ज़ाद के साथ है, इसका माना किसी को किसी चीज पर उभारना। आप किसी शख्स से कहते हैं हल्ला तज़रिबु ज़ैदन, आप जैद की पिटाई क्यों नहीं करते, माना है आप उसको उभार रहे हैं कि तुम्हें जैद की पिटाई करनी चाहिए, तो उसके लिए अरबी में क्या लाते हैं, अल्लाह और हल्ला, ये हरूफ तहजीज कहलाते हैं और ये फेल पर दाखिल होते हैं हमेशा क्योंकि फेल पर उभारा जाता है, हल्ला तजरीबु जैदन। तो कहते हैं ली अन्नहा इदा कानत अर्जन, इसलिए क्योंकि ला जब वो अर्ज के लिए हो, कानत मिन हरूफिल अफाली, तो वो हरूफ अफाल में से होगा, यानी वो हरूफ जो अफाल पर दाखिल होते हैं, मिसलु इन व लौ व हरूफ तहजीज ही, जैसे कि इन है और लौ है और हरूफ तहजीज हैं, फयजिब इंतिसाबुल इस्म बादहा, तो वाजिब है इसम का मनसूब होना इसके बाद, यानी जब ला किस लिए हो जाए, इस पर हमजा दाखिल हुआ और ये किस लिए हुआ, अर्ज के लिए हुआ, तो इस सूरत में ये हरूफ अफाल में से है, हमेशा अफाल पर दाखिल होगा, और इसके बाद इसम अगर आ भी जाए तो वो इसम मंसूब होगा। वो इसाम मंसूब होगा। फयजिब इंतिसाब इस्म बादहा, तो वाजिब होगा इसम का मंसूब होना इसके बाद। नहव मिसाल के तौर पर अला जैदन तुकरिमुहू, अला जैदन तुकरिमुहू। देखो यहां अला आया किस लिए आया, अर्ज के लिए आया, और इस सूरत में ये सिर्फ फेल पर दाखिल होता है तो यहां पर फेल महजूफ निकाल लेंगे। अला तुकरिमु जैदन तुकरिमुहू, तो इस पहले तुकरिमु का हजफ कर लिया गया और दूसरा तुकरिमु लाकर उसकी तफसीर कर दी गई। तो ये मा उजमिरा आमिलुहू अला शरीतति तफसीर की कबील से है। मा उजमिरा आमिलुहू अला शरीतति तफसीर, मा वो इसम, उजमिरा आमिलुहू जिसके आमिल को मुकद्दर कर लिया गया। ये जैदन ऐसा इसम है जिसके आमिल तुकरिमु को मुकद्दर कर लिया गया। अला शरीतति तफसीर किस शर्त पर, कि इसकी तफसीर आ रही है। तो यहां पर भी देखो तुकरिमुहू ये तफसीर आ गई। देखो तुकरिमुहू ये हाज अमीर जैद को राजे, तो ये जैदन मा उजमिरा आमिलुहू अला शरीतति तफसीर की कबील से है। वो किसे कहते हैं कि ऐसा इसम जिसके बाद फेल या शिबे फेल आए और वो फेल या शिबे फेल उसकी जमीर में मशगूल हो। और यहां पर भी जैदन के बाद तुकरिमु फेल आ रहा है और वो इस जैद की जमीर के अंदर मशगूल है, उसको नसब दे रहा है। तुकरिमु के लिए एक मफूल चाहिए और ये तुकरिमुहू यहां जमीर को नसब दे रहा है, तो अब ये जैदन में अमल नहीं कर सकता। फिर देखिए जैदन क्या है, मा उजमिरा आमिलुहू अला शरीतति तफसीर, ये किसे कहते हैं, ऐसा इसम कि जिसके बाद फेल या शिबे फेल आए और वो फेल या शिबे फेल इसकी जमीर में मशगूल होने की वजह से इसमें अमल नहीं कर सकता, वो इस जैदन को नसब नहीं दे सकता, वो तो इसकी जमीर हा के अंदर मशगूल है। इस तौर पर कि इसी फेल को या इसके मुनासिब को इस माकबल वाले इसम पर मुसल्लत किया जाए तो वो उसको नसब दे सके, और यहां एक और तुकरिमु निकाला जाए तो वो जैद को नसब दे सकता है। तो अल्लामा अंदलुसी क्या फरमाते हैं कि ये ला जब किस लिए हो जाए, अर्ज के लिए हो जाए, तो इस सूरत में ये हमेशा फेल पर दाखिल होगा, या वो फेल लफ्जों में होगा या तकदीरन होगा, और अगर कोई इसम इसके बाद आ गया तो वो मंसूब होगा। भाई मा उजमिरा आमिलुहू अला शरीतति तफसीर की कबील से होगा। आगे देखिए व इम्मत तमन्नी, या फिर वो हमजा जो है तमन्ना के लिए होगा। नहव अला मा अशरबहू, अला मा अशरबहू, काश के पानी होता कि मैं उसको पी लेता। हैसु ला युर्जा माउन, जहां पानी की उम्मीद न हो। हैसु ये यहां जर्फ के माना में है, जगह के लिए आया है, यानी उस जगह। ला युर्जा माउन, जहां पानी की उम्मीद नहीं है। फिर तर्जमा देखिए व इम्मत तमन्नी, या वो हमजा जो है उसका माना तमन्नी होगा। नहव अला मा अशरबहू, काश के पानी होता कि मैं उसको पी लेता। हैसु ला युर्जा माउन, उस जगह जहां पानी की उम्मीद ना हो। उस जगह जहां पानी की उम्मीद ना हो, इसलिए क्योंकि अगर पानी की उम्मीद है एक जगह पर, फिर आप कहते हैं अला मा, तो फिर तो आप पानी के बारे में सवाल कर रहे हैं कि पानी है या पानी नहीं है। लिहाजा ऐसी जगह जहां पानी की उम्मीद भी ना हो, फिर यह तमन्ना के लिए हो जाएगा। व अम्मा कौलुहू अला रजुलन जज़ाहुल्लाहु खैरा, और बाकी ये शायर का कौल जो है, ये आगे जो आ रहा है ये एक शायर का कौल है, शेर का मिसरा है। अला रजुलन जज़ाहुल्लाहु खैरन, अला रजुलन, काश के कोई आदमी होता, काश के कोई आदमी होता। जज़ाहुल्लाहु खैरा, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। ये एक शायर है भाई, इसको अपनी आशिका के घर के रास्ते की खबर नहीं, तो अब वो कहता है अला रजुलन, काश के कोई आदमी होता मुझे अपनी आशिका के घर के रास्ते का बतला देता। जज़ाहुल्लाहु खैरा, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे भाई। तो अब यहां देखो आपने हमें क्या कहा कि ला पर हमजा दाखिल हो जाए तो उसका अमल बदलता नहीं है, लेकिन यहां देखो अला रजुलन ये अमल बदल गया। ये होना तो क्या चाहिए था, अला रजुला साथ भी मिला हुआ है, नकेरा भी है, लेकिन मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं, तो इस सूरत में तो मबनी अल फता होना चाहिए था, लेकिन यहां इस पर नसब आया अला रजुलन। तो एक फसीह शायर अला रजुलन कह रहा है, मालूम हुआ हमजा जब ला पर दाखिल हो तो उसका अमल बदल जाता है। एतराज समझ में आया तो उसका जवाब देंगे। कहते हैं वह अम्मा कौलू, और बाकी किसी शायर का यह कौल जो है, अला रजुलन जजाहुल्लाहु खैरा, जजाहुल्लाहु खैरन ऐ जजाहुल्लाहु जजाअन खैरा। यह खैरन क्या है? यह मफूल मुतलक है भाई, बैतबार मौसूफ महजूफ के, जजाअन खैरा। तो किसी शायर का यह जो कौल है तो इसकी दो जवाब जिक्र करेंगे साहिब जामी। एक तो जवाब यह जिक्र करेंगे कि इमाम खलील इब्ने अहमद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह जो अला आया यह वो लाए नफी जींस नहीं है जिस पर हमजा दाखिल हुआ हो, बल्कि यह अलग हर्फ है जो तहजीज के लिए है, उभारने के लिए है। जैसे उभारने के लिए अल्लाह और हल्ला है, इसी तरह अला भी है। ये कौन जवाब दे रहे हैं? इमाम खलील इब्ने अहमद। याद रखो भाई, इमाम खलील इब्ने अहमद, इनकी वफात हुई है 170 हिजरी में भाई, 170 हिजरी में, और ये उस्ताज हैं इमाम सीबोवे के भाई, और इन्होंने ही इल्म अरूज की बुनियाद रखी। इन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे कोई ऐसा इलम आता फरमा जो इससे पहले आपने किसी को आता न फरमाया हो, तो चुनाचे अल्लाह ने इनको इल्म अरूज नसीब फरमाया। ये लोहारों के बाजार में से गुजर रहे थे, और लोहार जो है वो लोहे को आग पर गर्म करके उसको हथौड़ों से कूट कर उसकी शक्ल बदलते हैं। तो वो बाजार के अंदर हथौड़े चल रहे थे और उनके अंदर एक खास रवानी थी, हथौड़े एक तरतीब से चल रहे थे। क्या थी उनके अंदर? एक खास रवानी थी, यानी दो इकट्ठे हथौड़े लगे, फिर थोड़ा वक्फा आया, फिर दो इकट्ठे हथौड़े लगे, फिर वक्फा आया, फिर दो इकट्ठे हथौड़े लगे। तो देखो जितने भी होंगे, जो भी तरतीब होगी उनमें, तो यानी बार बार उसी तरह हो रहा था, बार बार। तो उस वक्त अल्लाह ने उनके जहन में यह इलम डाला और अशार के वजन बई, तो उन्होंने अशार के वजन फिर निकालना शुरू किए। तो यह तमाम अशार के खास औजान होते हैं, एक हर्फ इधर उधर हो जाए, एक हरकत इधर उधर हो जाए, पूरे शेर का वजन खराब हो जाता है। तो ये इल्मे अरूज जो है उसके मुजीद जो हैं इमाम खलील इब्ने अहमद हैं। तो कहते हैं फहादिही इंदल खलील लैसत लद्दाखिलत अलैहा हर्फुल इस्तिफामी, इसलिए क्योंकि ये वाला जो ला है ये इमाम खलील इब्ने अहमद रहमतुल्लाह के नजदीक लैसत ला, ये वो वाला ला नहीं है, अद्दाखिलत अलैहा हर्फुल इस्तिफामी, जिस पर हर्फ इस्तिफाम दाखिल हुआ हो। ये जो अल्लाह रजुलन के अंदर ला आ रहा है ये वो वाला ला नहीं है जिस पर क्या दाखिल हुआ हो, हमज़ा इस्तेफ़ाम, बल्कि ये तहजीज के लिए एक अलग हर्फ है। ये अल्लाह पूरा एक ही हर्फ है, ऐसा नहीं है कि ला अलग था और फिर उस पर हमजा दाखिल हुआ, दो हर्फ नहीं है, बल्कि ये एक ही हर्फ है मुस्तकिलन। और ये किस लिए वजा किया गया है? तहजीज के लिए, उभारने के लिए। तो कहते हैं फहादिही इंदल खलील लैसत लद्दाखिलत अलैहा हर्फुल इस्तिफामी, इसलिए क्योंकि ये वाला ला जो है इमाम खलील इब्ने अहमद के नजदीक लैसत ला, ये वो वाला ला नहीं है, अद्दाखिलत अलैहा हर्फुल इस्तिफामी, जिस पर हर्फ इस्तिफाम दाखिल हुआ हो, वलाकिन्नहु हर्फुन मौजूउन लितहजीज बिरासिही, लेकिन ये एक ऐसा हर्फ है मौजूउन जिसको वजा किया गया है लितहजीज उभारने के लिए, बिरासिही मुस्तकिलन, इसको मुस्तकिलन उभारने के लिए, तहजीज के लिए वजा किया गया है। बात समझ में आ गई भाई? मैंने इबारत पढ़ी लैसत लद्दाखिलता अलैहा हर्फुल इस्तिफहामी, इसकी वजह एराब सुन लीजिए भाई। ये लैसा क्या चाहता है? एक इसम और एक खबर, तो इसके अंदर हिया जमीर है जो राजे है पीछे हाजिही की तरफ, तो ये लैसत इसके अंदर हिया जमीर है जो राजे है पीछे जो हाजिही आया मुबतदा, और ये हाजिही के जरिए इशारा है वो जो पीछे शेर के अंदर आया था अला रजुलन, कि ये जो अला रजुलन के अंदर ला आया है ये वाला ला लैसत लद्दाखिलत अलैहा हर्फुल इस्तिफहामी, ये वो वाला ला नहीं है जिस पर हर्फ इस्तिफहाम दाखिल हुआ हो। बात समझ में आ गई? तो लैसत के अंदर हिया जमीर किसको राजे? हाजिही को, और हाजिही के जरिए इशारा किसको है? अला रजुलन के अंदर जो ला आ रहा है, तो हम मुख्तसरन यूं कह लो कि लैसत की हिया जमीर उसी ला को राजे है जो किसके अंदर है, अला रजुलन के अंदर है। ये वाला जो ला अभी अला रजुलन के अंदर ला आया, ये वाला जो ला है उसकी तरफ राजे है, तो ये वाला ला नहीं है। क्या नहीं है? ये लद दाखिलता ये खबर आ रही है और लैसा की खबर मंसूब होती है, तो ये ला जो है मंसूब है, लैसत ला ये वो वाला ला नहीं है। और अद दाखिलता इसकी सिफत है और सिफत पर वही अराब आता है जो मौसूफ पर हो, तो ये ला मंसूब है तो अद दाखिलता उसकी सिफत भी मंसूब। और नीज आगे जो आया ना हर्फुल इस्तेफहामी वो इस दाखिला का फाइल है, वो इस दाखिला का ला दाखिल हुआ है हमजा पर या हमजा दाखिल हुआ है ला पर? हमजा दाखिल हुआ है। तो अदाखिला सिफत है लफ्जों में ला की और माना में यह सिफत है आगे जो हर्फुल इस्तेफहाम आ रहा है उसके लिए। तो इमाम खलील फरमाते हैं लैसत लदाखिलत अलैहा हर्फुल इस्तेफहामी, ये वाला ला जो है वो ला नहीं है जिस पर हर्फ इस्तेफहाम दाखिल हुआ हो, वलाकिन्नहु हर्फुन मौज़ूउन लितहज़ीज़ बिरअसिही, लेकिन ये ऐसा हर्फ है जिसको तहजीज के लिए वजह किया गया है बिरअसिही मुस्तकिलन बई फकअन्नहु काला, गोया के शायर ने यूं कहा अला तुरूननी रजुलन, अला तुरूननी रजुलन, क्या आप मुझे एक ऐसा आदमी नहीं दिखाएंगे, यानी आपको मुझे एक ऐसा आदमी दिखाना चाहिए जो क्या करे मेरी आशिका के घर के रास्ते तक मेरी रहनुमाई कर दे। बात समझ में आ गई? तो अला तुरूननी, अला तुरूननी ये अरा यूरी से है, अरा यूरी आपने यस अलू का कानून पढ़ा है, यस अलू के अंदर आपने पढ़ा है यस अलू पढ़ना भी जायज है, और कानून क्या है कि हमजा मुतहर्रिका से माकबल हर्फ सही साकिन आ जाए तो हमजा की हरकत माकबल को नकल करके हमजा को हजफ करना जायज है। तो यस अलू देखो हमजा मुतहर्रिक है उस पर फतहा है और माकबल में सीन क्या है साकिन, तो हमजा की हरकत यानी फतहा सीन को दे दिया और हमजा को हजफ कर दिया तो क्या बन गया यस अलू। तो ये जवाजी कानून है, वजूबी नहीं है। आप यस अलू भी पढ़ सकते हैं और आप यस अलू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि रा या रा और अरा यूरी के अंदर ये कानून वजूबी है। रा या रा रुयतन देखना, देखना आंखों से देखना, इसका मसदर क्या है रुयत भाई, तो रा यारा असल में क्या था यारा यर आयो यर आयो यफ्ता हो, फिर क्या किया गया हमजा की हरकत रा को दे दी और हमजा को गिरा दिया और फिर यहां पर जम्मा सकील था वो गिरा दिया, क्या बन गया यारा। और ये वाजिब है, आप यहां यर आ नहीं पढ़ सकते बल्कि क्या पढ़ना पड़ेगा यरा ही पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह बाबी फाल में ले गए इसी रा यरा को, अरा यूरी, यूरी असल में क्या था युर इयो युक रीमो, हमजा मुतहर्रिक माकबल रा साकिन तो हमजा की हरकत रा को दे दी और हमजा को हजफ कर दिया, क्या बन गया यूरियो और फिर यहां पर जम्मा सकील था वो गिरा दिया तो यूरी हुआ। और ये कानून वजूबी है, यहां पर आप यूरी यू नहीं पढ़ सकते बल्कि यूरी ही पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो यूरी की गर्दान पढ़ें, यूरी यूरियानी यूरूना, तुरी तुरियानी यूरीना, तुरी तुरियानी तुरूना, तो ये तुरूना सीगा है, अला तुरूना, अला तुरूना नी। बात समझ में आ गई? अला तुरूननी अरा यूरी का क्या माना है दिखाना, अला तुरूननी रजुलान तुम क्यों मुझे एक आदमी नहीं दिखाते, उभार रहा है यानी तुम्हें एक आदमी मुझे दिखाना चाहिए जो मेरी रहनुमाई करे। तो फकान नहू काला, तो गोया के शायर ने कहा अला तुरूननी रजुलन यानी हल ला तुरूननी रजुलन, क्यों तुम मुझे कोई आदमी नहीं दिखाते जो मेरी रहनुमाई करे। वलिदालिका नुसीबा व नुवीना, और इसीलिए रजुलन जो है उसको नसब दिया गया, शेर में क्या था अला रजुलन जजाहुल्लाहु खैरा, इसीलिए ये जो अला के बाद रजुल आया उसको नसब भी दिया गया व नुवीना और तनवीन भी दी गई। जैसे देखो हल्ला तुरूननी रजुलन, यह हल्ला क्या है, हर्फ तहजीज है, यह किस पर दाखिल होता है, फेल, और माबाद मनसूब होता है। तो यहां भी इसी तरह तुरूननी फेल यहां महजूफ है और रजुलन मनसूब है, यह मबनी अल फता नहीं है भाई। तो यह रजुलन को तुरूननी फेल नसब दे रहा है। तो अला रजुलन के अंदर यह रजुलन यह मनसूब है, यह तुरूननी फेल के लिए मफूल सानी है। आरा यूरी भाई, आरा यूरी दो मफूल चाहता है। अरई तू जैदन अमरन, अरई तू मैंने दिखाया जैदन जैद को, क्या दिखाया अमरन, तो ये देखो दो मफूल चाहता है। तो यहां पर भी तुरूननी ये जो या जमीर है ये मफूल अव्वल है और रजुलन मफूल सानी है भाई। तो ये इसलिए रजुलन मंसूब है कि फेल मुकद्दर तुरूननी के लिए ये मफूल सानी बन रहा है। तो कहते हैं वलीदालिका नुसीबा व नुवीना, और इसीलिए इस रजुलन का लफ्ज जो है इसको नसब दिया गया व नुवीना और तनवीन दी गई। वही आइंदा यूनुस अल्लती दखलत अलैहा हमजतुल इस्तिफहामी, जबकि यूनुस नहवी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि नहीं ये वही लाए नफी जिन्स है, ये वही लाए नफी जिन्स है और उस पर हमजा इस्तिफहाम दाखिल हुआ है भाई। वो तो उस सूरत में तो अला रजुला मबनी अल फता होना चाहिए था, ये तो मंसूब है। तो वो जवाब देते हैं कि भाई यहां पर जो तनवीन इस पर लाई गई वो जरूरत शेरी की वजह से है। मैंने बताया शेर के अपने मखसूस औजान होते हैं, एक हर्फ या एक हरकत भी बदल जाए तो पूरे शेर का वजन खराब हो जाता है। तो यहां पर अगर बगैर तनवीन के हो अला रजुला तो फिर शेर का वजन खराब हो जाता है। तो शेर के वजन को बरकरार रखने के लिए यहां तनवीन की जरूरत थी, इसलिए शायर इस पर तनवीन ले आया, वरना यह वही लाए नफी जिन्स है और यह रजुल हकीकत में क्या है मबनी अलल फता है। तो जो तनवीन जो आई है वह जरूरत शेरी की वजह से आई है। याद रखिए ये जो यूनुस नहवी है इनका इंतकाल हुआ है 182 हिजरी में, यानी इनका और इमाम खलील इब्न अहमद रहिमहुमल्लाह दोनों का जमाना एक ही है भाई। तो कहते हैं वही आइंदा यूनुस लल्लती दखलत अलैहा हमजतुल इस्तिफहामी बिमानत तमन्नी, और ये जो ला है यूनुस नहवी के नजदीक लल्लती दखलत अलैहा हमजतुल इस्तिफहामी ये वही ला है जिस पर हमजा इस्तिफहाम दाखिल हुआ है। बिमानत तमन्नी, और ये किस माना में है हमजा, तमन्ना के माना में है यहां पर। फकानल कियासु अला रजुला, तो कियास जो था वो अला रजुला था कि यहां अला रजुला होना चाहिए था। वला किन नहू नव नहू, लेकिन शायर ने इसको तनवीन दी ले जरूरत शायरी, किसकी वजह से, जरूरत शायरी की वजह से। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम ये कि आज साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि हमजा इस्तेफाम जब लाइन नफी जिन्स पर दाखिल हो जाए तो उसके अमल में कोई तब्दीली नहीं आती, और इस सूरत में फिर ये जो हमजा आया है कभी तो ये हकीकतन इस्तेफाम के लिए ही होगा, कभी अर्ज के लिए होगा और कभी तमन्नी के लिए होगा। तो ला का अमल इस हमजा के दाखिल होने से नहीं बदलता। फिर साहिब जामी ने आपको बतलाया कि जो साहिब काफिया ने फरमाया कि जब ये हमजा अर्ज के लिए हो तब भी ला का अमल नहीं बदलेगा, कहते हैं ये बात इमाम सीबोवे रहमहुल्ला ने जिक्र नहीं की भाई, बल्कि ये इमाम सीराफी रहमहुल्ला ने जिक्र फरमाई है और उन्हीं का इत्तबा किया है अल्लामा जजूली और अल्लामा इब्ने हाजिब रहिमहुमल्लाह ने भाई, और इसको अल्लामा अंदलुसी ने रद्द फरमाया है और फरमाते हैं कि यह गलत है, इसलिए क्योंकि जब यह ला अर्ज के लिए हो जाएगा तो उस सूरत में फिर यह हुरूफ अफ़ाल में से होगा जो सिर्फ फेल पर दाखिल होते हैं, लिहाजा वहां लफ्जों में या तकदीरन फेल का होना जरूरी है। तो अगर ये इसम पर दाखिल भी होगा तो वहां इसम पर नसब पड़ेंगे और वहां फेल मुकद्दर होगा जो उसको नसब दे रहा होगा, जैसे अला जैदन तुक्रिमुहू। और जब ये हमजा तमन्ना के लिए हो तो उस सूरत में भी ला के अमल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर इश्काल होता है कि अरब का एक फसीह और बलीग शायर कहता है अला रजुलन फजज़ाहुल्लाहु खैरा, तो यहां अला ये इस पर हमजा इस्तेफाम आया और ये तमन्ना का फायदा दे रहा है, और इस सूरत में ला का अमल नहीं बदलना चाहिए था लेकिन रजुलन पर तनवीन आ रही है, मालूम हुआ ला का अमल हमजा के दाखिल होने से बदल गया। तो उसके दो जवाब दिए साहिब जामी ने। एक जवाब इमाम खलील इब्ने अहमद रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि ये वो ला नहीं है जिस पर हमजा इस्तेफाम दाखिल हुआ हो, बल्कि ये पूरा आला ये मुस्तकिलन एक हर्फ है जो तहजीज के लिए है, उभारने के लिए है। तो ये अला किस माना में है? हल ला के माना में है। और ये किस पर दाखिल होता है? हमेशा फेल पर दाखिल होता है, क्योंकि हरूफ तहजीज में से है। और लिहाजा यहां फेल महजूफ है और कलाम असल में यूं है, अला तुरून नी रजुलन ऐ हल ला तुरून नी रजुलन, तुम क्यों मुझे कोई आदमी नहीं दिखाते जो मेरी रहनुमाई कर दे। तो ये रजुलन को तुरून नी फेल नसब दे रहा है। बात समझ में आ गई। और दूसरा जवाब जो है इमाम यूनस रहमहुल्ला का जिक्र फरमाया कि वो फरमाते हैं कि ये वही ला है जो नफी जिन्स के लिए होता है और इस पर हमजा इस्तेफाम दाखिल हुआ है, लेकिन ये जो रजुलन तनवीन पड़ी शायर ने ये जरूरत शायरी की वजह से है, क्योंकि अगर इस पर बगैर तनवीन के फतहा पड़ा जाए तो फिर शेर का वजन खराब हो जाता है। तो असल में तो ये अला रजुला ही है, लेकिन जो तनवीन शायर ने इस पर पड़ी वो जरूरत शायरी की वजह से पड़ी। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस वहादा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।